आज हम चीन और जापान के संबंधों पर चर्चा करते हुए उनके बीच हुए युद्ध के कारणों और परिणामों पर चर्चा करेंगे। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप जापान एक आधुनिक राष्ट्र बन गया। अब जापान का ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर गया। जापान की दृष्टि चीन पर लगी हुई थी, जिसको पश्चिमी देशों की भांति वह भी अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना चाहता था। 1892 ईस्वी में जापान ने चीन को व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य किया। शीघ्र ही जापान को अपनी साम्राज्यवादी नीति की एक झलक पेश करने का अवसर मिला। प्रशांत महासागर के रेक्यू द्वीप में कुछ जापानी नागरिकों का निवास था। यह द्वीप चीन की संप्रभुता के अधीन था। 1890 ईस्वी में रेक्यू द्वीप के कुछ निवासी सामुद्रिक यात्रा पर निकले। उनका जहाज फार्मोसा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिए फार्मोसा में शरण लेनी पड़ी। जापान के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने चीन से हर जाने की मांग की, लेकिन चीन की सरकार ने जापान के दावे का विरोध किया। जापान ने 1894 ईस्वी में एक युद्ध पोत भेजकर दक्षिणी फार्मोसा पर अधिकार कर लिया। परिस्थिति से बाध्य होकर चीन ने हर्जाना देना स्वीकार किया। जापान के इस के साथ ही रिक्यू का शासक भी जापान की सत्ता स्वीकार करने पर सहमत हो गया। 1889 ईस्वी में वहां जापानी प्रांतीय शासन लागू कर दिया गया। यह जापान के साम्राज्यवाद का आरंभ था। कोरिया की समस्या। जापान ने अपने साम्राज्यवाद का मुख्य लक्ष्य चीन को बनाया और सर्वप्रथम कोरिया में उसने चीन के साथ अपनी शक्ति का परीक्षण किया। कोरिया अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए कोरिया प्रायद्वीप में जापान की रुचि बहुत काल से थी। 16वीं शताब्दी में कोरिया पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से चीन और जापान में दीर्घकालीन युद्ध हो चुका था, जिसमें जापान की पराजय हुई थी। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जापान यह नहीं चाहता था कि कोरिया पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार बना रहे। 17वीं शताब्दी में चीन के मंचू सम्राटों ने कोरिया पर अधिकार कर लिया था। तभी से कोरिया चीन के अधीन का प्रदेश माना जाता रहा है। यद्यपि कोरिया का अपना पृथक सम्राट होता था, जो क्रियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र राजा के समान अपने देश पर शासन करता था, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरिया का स्वतंत्र राजा चीन के सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार करता था। जब कोई नया राजा कोरिया के सिंहासन पर आरूढ़ होता था, तो वह चीन के सम्राट की अनुमति प्राप्त करता था। कोरिया की ओर से चीन के सम्राट की सेवा में प्रतिवर्ष भेंट और उपहार भेजे जाते थे, और विशिष्ट अवसरों पर कोरिया का राजा या उसका कोई प्रतिनिधि पेकिंग के राज दरबार में भी उपस्थित हुआ करता था। इस प्रकार कोरिया का राज्य चीन का एक संरक्षित राज्य था। कोरिया में जापान का स्वार्थ। यद्यपि कोरिया चीन के संरक्षण में था, लेकिन जापान अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रायद्वीप को महत्वपूर्ण मानता था। कोरिया प्रायद्वीप में जापान का परंपरागत स्वार्थ था, लेकिन अभी तक जापान को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिला था। अब जापान में सैनिकवाद का उदय हो चुका था, अतः यह आवश्यक हो गया कि कोरिया के संबंध में उग्र नीति का अवलंबन किया जाए। इस समय कोरिया यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी नीति के भंवर जाल में फंस रहा था, और जापान इन घटनाओं को एक शांत दर्शक के रूप में नहीं देख सकता था। इस पर ऐसे राज्य का संरक्षण था जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और स्वयं अनेक यूरोपीय राजाओं के संरक्षण में चला गया था। ऐसी स्थिति में कोरिया चीन के हाथ से निकलकर किसी भी यूरोपीय राज्य के अधिकार में चला जा सकता। कोरिया में नवीन साम्राज्यवाद के अग्रदूत ईसाई धर्म प्रचारक प्रवेश कर चुके थे, इसलिए जापान की चिंता में वृद्धि हुई और कोरिया को वह उसके भाग्य पर छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। क्योंकि चीन की नीति कोरिया में हस्तक्षेप करने की नहीं थी और चूंकि कोरिया में निरंतर गड़बड़ी और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती थी, अतः यह जापान के लिए उपयुक्त बहाना था कि वह कोरिया में हस्तक्षेप करे। अन्यथा इस बात की संभावना थी कि पश्चिमी शक्तियां कोरिया में हस्तक्षेप कर बैठती। पश्चिमी देशों ने आरंभ से ही कोरिया से संधि कर रखी थी और वे पहले चीन के अधीनस्थ प्रदेशों पर अधिकार कर चुके थे। इस समय रूस तेजी से पूर्व की ओर अपना प्रसार कर रहा था। उसने 1868 ईस्वी में उसूरी नदी के पूर्व के प्रदेश पर कब्जा करके कोरिया के उत्तरी सीमा के निकट व्लादिवोस्टोक का बंदरगाह स्थापित किया, लेकिन शीतकाल में यह बंदरगाह बर्फ जम जाने के कारण बंद हो जाता था। इसलिए रूस दक्षिण की ओर कोई ऐसा खुला निकास चाहता था जिससे वह प्रशांत महासागर में निरंतर आ जा सके। उसकी नज़र कोरिया पर थी और उसने कुछ समय के लिए कोरिया में अपने पैर जमा भी लिए थे, परंतु पश्चिमी शक्तियों के द्वेष के कारण इसने कोरिया की छाती पर से अपना पैर हटा लिया था। इससे जापान को भय लगा कि कहीं कोई यूरोपीय शक्ति कोरिया पर अपना ध्यान स्थापित ना कर ले, इसलिए जापान के नेता कोरिया पर अपना अधिकार स्थापित करना आवश्यक समझते थे। साइगो ताकामोरी कोरिया पर आक्रमण करने का कट्टर समर्थक था, लेकिन अनेक कारणों से कोरिया पर यह आक्रमण नहीं हुआ। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में परिस्थिति एकदम परिवर्तित हो गई थी और अब जापान शांतिपूर्वक तमाशा नहीं देख सकता था। एक जापानी राजनीतिक नेता का कहना था, मैं यह निश्चय पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हम कोरिया को उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारा उद्देश्य किसी न किसी प्रकार पूरा नहीं हो जाता। हम अपने भविष्य और अपनी स्वतंत्रता के लिए कोरिया में युद्ध कर रहे हैं। हमें पूरा भय है यदि कोरिया किसी यूरोपीय शक्ति के हाथों में पड़ जाता है तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। कोरिया में जापान का प्रवेश। चीन जापान युद्ध के 20 वर्ष पूर्व भी जापान ने कोरिया में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। कभी तो वह कोरिया की स्वतंत्रता का दम भरता, कभी वह कोरिया के सुधारवादी दल को उभारता, कभी वह कोरिया में चीन के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता, कभी वह कोरिया की सहायता करने का स्वांग भरता और कभी वह कहता कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उसे कोरिया की रक्षा करना आवश्यक है, अन्यथा स्वयं उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। 1875 ईस्वी में जापान का एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर पहुंचा। कोरिया की सरकार ने इस जहाज पर गोलाबारी आरंभ कर दी। इसी कारण जापान में बड़ी बेचैनी फैली और उग्रवादी जापानी नेता कोरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की मांग कर रहे थे। लेकिन उस समय जापान के अधिकारियों ने बड़े संयम से काम लिया तथा कोरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के स्थान पर उन्होंने जापान की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल कोरिया भेजने का निश्चय किया। यह प्रतिनिधिमंडल कोरिया की सरकार को जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित की। यह प्रतिनिधिमंडल 1876 ईस्वी में कोरिया पहुंचा और कोरिया जापान की धमकी के डर से संधि करने को बाध्य हुआ। कोरिया के कुछ बंदरगाहों को जापानी व्यापार के लिए खोल दिया गया और जापान को अनेक व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। जापान को कोरिया में राज्य क्षेत्रातीत अधिकार भी प्राप्त हो गया और उसने कोरिया की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी। यह चीनी संप्रभुता को चुनौती थी, परंतु चीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। परिणाम स्वरूप कोरिया में जापानियों के पैर जम गए। कोरिया से जापान की संधि हो जाने पर अब दूसरे राज्य भी इस देश में सुविधा प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। 1882 ईस्वी में जापानी ढंग पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया के मध्य संधि हुई। इसके उपरांत इसी नमूने पर ब्रिटेन, जर्मनी तथा रूस और इटली के साथ भी कोरिया को पृथक-पृथक संधियां करनी पड़ी। चीन ने इन संधियों का कोई विशेष विरोध नहीं किया और इस प्रकार कोरिया को चीन की अधीनता से मुक्त स्वीकार कर लिया गया। कोरिया की विस्फोटक स्थिति। इस समय कोरिया में काफी गड़बड़ी थी। 1862-63 ईस्वी में इसके दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में किसानों ने भारी विद्रोह किया। कोरिया के तत्कालीन शासक बड़े अयोग्य और निकम्मे थे। वे सदैव ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अतः कोरिया का वातावरण सदैव ही अशांत बना रहता था। कोरिया की राजनीति में दो दल थे, एक दल चीन का समर्थन करता और दूसरा दल जापान का। कैथोलिक ईसाइयों के आगमन से आधुनिकता का भी प्रसार हुआ। इसके विरोध में तोंग हाक नामक रूढ़िवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। शासन दल ने एक परंपरा को दृढ़ करने का प्रयास किया तथा दूसरी ओर कुछ सुधारों का भी श्रीगणेश किया। इस कार्यक्रम का संचालक यी हा उंग था, जो ताए वोंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ताए वोंग को हम महान राजकुमार कह सकते हैं। वह पृथकता की नीति का पक्षपाती था और यही कारण है कि उसने जापान का विरोध किया। 1876 ईस्वी में जापान के साथ की गई संधि का भी उसने विरोध किया। इन रूढ़िवादियों को चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि सुधारवादी जापान पर आश्रित थे। इस समय तक जापान की कोरियाई नीति लगभग स्थिर हो गई। जापान में उग्र राष्ट्रीयता का तूफान चल रहा था और जापानी अधिकारी प्रसारवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने कोरिया पर अधिकार करने का नारा उठाया। जनरल कुरोदा ने मांग की इससे पूर्व की चीन शक्ति संपन्न हो जाए, जापान को कोरिया पर अधिकार कर लेना चाहिए। कोरिया का राजनीतिक वातावरण प्रतिदिन अशांत होता जा रहा था। 1882 ईस्वी में वहां रूढ़िवादियों में संघर्ष हो गया। रूढ़िवादियों ने जापानी दूतावास पर आक्रमण करके वहां के निवासियों को निकाल दिया। इस पर जापानी अधिकारी अत्यंत नाराज हुए और कोरिया को धमकी दी, हर्जाना वसूल किया तथा अपने दूतावास की रक्षा के लिए अपनी फौज रखने का अधिकार प्राप्त किया। 1884 ईस्वी में कोरिया में एक अन्य विद्रोह हो गया। इस समय चीन यूरोपीय राष्ट्रों से निपटने में व्यस्त था। चीन की अव्यवस्था से लाभ उठाकर कोरिया के चीन विरोधी नेताओं ने शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने का प्रयास करना जारी कर रखा। इस प्रकार पुनः रूढ़िवादियों तथा सुधारवादियों में संघर्ष हो गया। एक ने चीन से और दूसरे ने जापान से सहायता की प्रार्थना की। दोनों ही देशों ने अपने अपने पक्ष की सहायता सेना भेजी। चीन ने कोरिया में जापानी सेनाओं की प्रवेश का कड़ा विरोध किया, क्योंकि अब वह इस परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि किसी अन्य देश की सेना कोरिया में आकर अपना पैर जमा ले। चीनी सेना भी कोरिया में उपस्थित थी, अतः जैसे ही जापानी सेना ने कोरिया में प्रवेश किया, स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। लेकिन इस बार दोनों ही देशों ने अत्यंत संयम से काम लिया। 1885 ईस्वी में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हो गया और यह निश्चय किया गया कि यदि उनमें से किसी एक को अपनी सेना कोरिया में भेजनी पड़े तो वह दूसरे को सूचना दिए बगैर ऐसा नहीं करेगा, और मामले के निपटारे के बाद अपनी सेना को वापस बुला लेगा। इस संधि के हो जाने पर दोनों ने कोरिया से अपनी अपनी सेनाएं हटा ली और कुछ समय के लिए कोरिया में शांति स्थापित हो गई, लेकिन पारस्परिक वैमनस्य चलता ही रहा। चीन और जापान के युद्ध का विस्फोट 1891 ईस्वी में रूस ने फ्रांस से ऋण लेकर 3500 मील लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे बनाने का निश्चय किया। इसके लिए वह दक्षिण में कोरिया में अपना अड्डा बनाना चाहता था। इससे जापान सावधान हो गया। इसी बीच 1894 ईस्वी में कोरिया में पुनः एक विद्रोह हो गया। तोंगहाक दल के नेतृत्व में यह विद्रोह मुख्यतः विदेशियों के खिलाफ था। शाही फौज इसे दबाने में असमर्थ रही थी, अतः उन्होंने चीन से सहायता मांगी। चीन की सरकार ने तुरंत ही एक सैनिक टुकड़ी भेज दी, किंतु 1885 ईस्वी की संधि के अनुसार उसने टुकड़ी को भेजने की खबर जापान की सेना को नहीं दी। जापान ने विरोध करते हुए कहा कि चीन के सैनिकों का इतनी विशाल संख्या में कोरिया में जाना शांति संधि की शर्तों के विरोध है। बदले में जापानी शासकों ने भी, ध्यान से सुनिए, बदले में जापानी शासकों ने भी चीन को विधिवत सूचित करके 7000 सैनिक भेज दिए। चीन और जापान की सेनाओं के कोरिया पहुंचने के पूर्व ही कोरिया की सेनाओं ने विद्रोह का दमन कर दिया था। इसके उपरांत कोरिया में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। कोरिया की भूमि पर दोनों विदेशी सेनाएं डटी रही। दोनों ही सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों सेनाओं के मध्य किसी भी समय युद्ध का आरंभ हो जाएगा। वार्तालाप द्वारा कुछ समय के लिए चीन जापान युद्ध को टाल दिया गया। चीन ने प्रस्ताव रखा कि दोनों ही देश कोरिया से अपनी सेनाएं हटा लें। दोनों ही देश भविष्य में कभी भी कोरिया की राजनीति में हस्तक्षेप ना करें। जापान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए प्रस्ताव रखा चीन और जापान दोनों मिलकर सहयोगपूर्वक कोरिया में आंतरिक सुधार करें। चीन ने जापान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में दोनों ही देश युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे और उपयुक्त कूटनीतिक वार्ता यथार्थ में युद्ध के लिए बहाना ढूंढने के उद्देश्य से की जा रही थी। जापान युद्ध के लिए कृत संकल्प था तथा वह अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था ताकि वह पश्चिमी देशों को विश्वास दिला सके कि वह अपनी न्याय व्यवस्था व अपनी आगमन शुल्क व्यवस्था का स्वयं प्रबंध कर सकता है और उनमें अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। जापान ने अब अकेले ही कोरिया में सुधार करने का प्रयास किया। 26 जून को जापान के मंत्री ने कोरिया सरकार को सुधार करने के लिए बाध्य किया। कोरिया सरकार ने आनाकानी की। इस पर 23 जुलाई को जापानी सेनाओं ने सम्राट को बंदी बना लिया और सुधारों की घोषणा कर दी। नई सरकार ने कोरिया में चीनी अधिकारियों को निकालने के लिए जापान की सहायता मांगी। रूस तथा इंग्लैंड ने चीन का समर्थन किया, लेकिन जापान ने उनको यह आश्वासन देकर शांत कर दिया कि जापान का विचार ना तो कोरिया को हड़पने का है ना ही शंघाई में विदेशी हितों को हानि पहुंचाने का है। अगस्त में एक चीनी जहाज चीनी सैनिकों सहित कोरिया की ओर जा रहा था। जापान ने उसे मार्ग में ही पकड़ लिया क्योंकि उक्त जहाज ने आत्मसमर्पण नहीं किया, अतः उस पर आक्रमण कर फलस्वरूप प्रत्येक चीनी यात्री को समुद्र में जहाज सहित डुबो दिया गया। इस घटना से दुखी होकर चीन ने 1 अगस्त 1893 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी और दोनों पक्ष युद्धग्रस्त हो गए। चीन की पराजय लगभग 9 माह तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में जापान को विजय प्राप्त हुई। स्थल युद्ध तथा जल युद्ध दोनों ही में चीन की करारी पराजय हुई। जापान की सैनिक तैयारियां अति श्रेष्ठ थी और यथार्थ में चीन और जापान की सेना में कोई समानता नहीं थी। जापान ने अपनी सैनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जापान की 1.5 लाख सेना सुदृढ़ थी, उसे उत्तम प्रशिक्षण दिया गया था, जापानी सैनिकों को यथासमय वेतन मिलता था और उसके सेनापति अत्यंत योग्य तथा अनुभवी थे। उन्हें गोला बारूद तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं यथासमय तथा आवश्यकता अनुसार मिलती रहती थी। जापान नौ सेना में पर्याप्त यात्री जहाज थे जो सेना को अथवा युद्ध सामग्री को रणक्षेत्र में शीघ्रतापूर्वक पहुंचाया करते थे। इसके विपरीत चीन की सेना एकदम निरर्थक थी। उसके पास ना शस्त्रार्थ थे और ना ही उसके सैनिक प्रशिक्षित थे और सैनिकों को नियमित वेतन भी नहीं मिलता था। कहने को तो चीन की नौसेना मजबूत थी और उसके युद्धपोत आधुनिक नमूने के थे, किंतु उसके सेनापति अत्यंत अयोग्य थे। इसके अतिरिक्त चीन का शासन प्रबंध भी दूषित और भ्रष्ट था। फल यह हुआ कि चीन के बड़े युद्धपोतों की तोपों के लिए जिन गोलों और बारूदों की व्यवस्था की गई, वे युद्ध स्थलों में लकड़ी के गोले और बुरादे निकले। ऐसी दशा में चीन की पराजय अवश्यंभावी थी। वास्तव में युद्ध के आरंभ से अंत तक चीन को कोई सफलता नहीं मिली। सितंबर के अंत तक चीनी सेना को कोरिया से भागना पड़ा और यालो नदी की मुठभेड़ में चीन की बड़ी ही भीषण पराजय हुई। जापान की एक सेना ने मंचूरिया पर भी और दूसरी सेना ने लियाओतुंग प्रायद्वीप पर आक्रमण किया। किंग चाओ और टाकिन का भी पतन हो गया। उत्तर में अनेक चीनी रक्षा चौकियों पर जापान ने अधिकार जमा लिया। 1895 ईस्वी के आरंभ तक जापान की सेनाएं शानतुंग जा पहुंची, जो कोरिया के दूसरे छोर पर स्थित था। फरवरी के मध्य तक वेई हाई वेई का भी पतन हो गया। उत्तर में अनेक रक्षा चौकियों पर जापान ने अधिकार कर लिया। इसके उपरांत जापान की सेनाएं चीन की राजधानी को घेरते हुए आगे बढ़ने लगी। इस दशा में चीन की सरकार ने जापान के साथ संधि करने में अपना कल्याण समझा और इसके लिए प्रस्ताव भी रखा। चीन को पराजित होते देखकर वहां का एक अधिकारी ली हंग चोंग मार्च 1895 ईस्वी में जापान के प्रधानमंत्री इतो हिरो बुमा से बातचीत करने के लिए जापान आया। दोनों अधिकारियों की सिमोनोस्की में बातचीत हुई। किसी बदमाश जापानी ने ली हंग चांग को गोली मार दी, जो उसकी बाईं आंख के नीचे लगी, परंतु वह बच गया। जापानी प्रधानमंत्री को उसके साथ नम्रता का बर्ताव करना पड़ा। सिमोनोस्की की संधि 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को चीन और जापान के बीच युद्ध का अंत करने के उद्देश्य से जो संधि हुई, उस संधि की शर्तें निम्न प्रकार थी। कोरिया को एक अत्यंत स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह स्वीकार किया गया कि उस पर चीन का भी किसी भी प्रकार का प्रभुत्व ना रहे। चीन ने जापान को पेस्कादेरस, फार्मोशा, लियाओतुंग प्रायद्वीप दे दिया। चीन ने जापान को एक विशाल धनराशि युद्ध के हर जाने के रूप में देना स्वीकार किया। जब तक चीन यह रकम नहीं दे देता, तब तक जापान वेई हाई वेई के बंदरगाह पर अपना अधिकार रख सकता था। चीन ने जापान से एक व्यापारिक संधि की, जिसमें उसने जापानी उद्योग और व्यापार के लिए चुंगकिंग, सूत्रो, हांगचो के बंदरगाह खोल दिए। उसे वे सुविधाएं प्रदान की गई जो यूरोपीय देशों को प्राप्त थीं। चीन और जापान युद्ध के परिणाम। चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय ने विश्व के देशों के सम्मुख चीन की निर्बलता स्पष्ट कर दी। अभी तक किसी भी पश्चिमी राष्ट्र को चीन में अपने प्रभुत्व की स्थापना करने का साहस नहीं होता था, किंतु इस युद्ध के उपरांत जापान के अतिरिक्त जर्मनी, ब्रिटेन व फ्रांस आदि देश चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जापान की गणना विश्व की महान शक्तियों में की जाने लगी। कोरिया से चीन को खदेड़ने के उपरांत अब जापान इस स्थिति में था कि वह अपनी सुधार योजनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक कोरिया में क्रियान्वित कर सके। इस युद्ध का जापान की नीति पर अति व्यापक व लाभदायक प्रभाव पड़ा। जापान को कोरिया अपने निर्मित माल की खपत करने के लिए एक बाजार तथा उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान के रूप में प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उसे चीन में भी अपने माल को खपत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस युद्ध के उपरांत जापान को अपनी राष्ट्रीय प्रगति तथा औद्योगिक विकास के स्वर्ण अवसर प्राप्त हुए। यथार्थ में यह जापान की आशातीत सफलता थी। उस समय जबकि किसी भी पश्चिमी राष्ट्र को चीन को छेड़ने का साहस नहीं हो रहा था, उसके छोटे से पड़ोसी देश जापान ने इस सोते हुए अजगर की निद्रा को भंग करके विश्व के सम्मुख उसकी निर्बलता को स्पष्ट कर दिया। कोई यूरोपीय राष्ट्र आशा नहीं करता था कि जापान इस युद्ध में चीन को पराजित कर देगा, लेकिन जापान ने 8 माह के युद्ध में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करके चीन को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। इससे समस्त विश्व आश्चर्यचकित रह गया। इतिहासकारों हार्नवैक का कथन है, विश्व के विशाल, प्राचीन तथा जनशक्ति से पूर्ण, राष्ट्रीय शक्ति तथा साधनों से भरपूर एक विस्तृत साम्राज्य को एक छोटे से पड़ोसी राज्य ने अपनी सैनिक शक्ति से पराजित कर दिया। इस विजय से जापान को अत्यधिक प्रेरणा मिली और उसे अपनी साम्राज्यवादी नीति का दृढ़ता से के साथ पालन किया। मंचूरिया में रूस तथा जापान के स्वार्थों में संघर्ष था। जापान ने रूस के साथ भी युद्ध करने में कोई हिचकिचाहट प्रदर्शित नहीं की और 1904 ईस्वी में उसने रूस के साथ युद्ध भी आरंभ कर दिया, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई।